श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय। राधा माधव जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय। जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशो यमुना तीर वनचारी यमुना यमुना तीर वनचारी यमुना तीरारी जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय। राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय। गोपी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय। हरी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यश जन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यश जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय 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 सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय दोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय दोर बोल हरि बोल हरि बोल त्रिभुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की इस डिवाइन ग्रेज अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की शिष्य राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की शिष्य गौर निताय की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकिम् श्रीमद्भागवत दसम स्कंद अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 10 तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यं उल्बणं घोर अंकं आदाय शिशो ददो अथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत्प्राणे समं रोष समन्वित अपिबत् तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् गोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत् तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् गोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणे समं रोष समन्वितो पिब तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् गोरांकमादाय शिशो गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणे समं रोष समन्वितो पिब तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् गोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत तस्मिन् स्तनं दुर्जरमुल्बणम् गोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणे समं रोष माताजी तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् गोरांकमादाय शिशोर्ददा गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत। प्राणेः समं रोषसमं गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत। प्राणे समं रोष तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुर्बणम्। गोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ। गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत। प्राणे तस्मिन् उस स्थान में स्तनम स्तन दुर्जर वीर्यम विष से मिश्रित अत्यंत शक्तिशाली हथियार, उल्बणम भयंकर घोर अत्यंत भयानक पूतना, अंकम अपनी गोद में, आदाय रख कर शिशो बालक के मुख में, ददो दिया अथ तत्पश्चात, गाढ़ं अत्यंत कठोर कराभ्याम दोनों हाथों से भगवान भगवान प्रपीड्य पीड़ा पहुंचाते हुए तत्प्राणे उसके प्राण समम के साथ रोष समन्वित उस पर क्रुद्ध होकर अपिबत स्तनपान किया। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की उसी जगह भयानक तथा खूंखार राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया। उनके स्तन के चुनचुक में घातक एवं तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष पुता हुआ था, किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनके स्तन को पकड़कर अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा उसके प्राण दोनों चूस डाले। तात्पर्य, भगवान कृष्ण पुतना पर अपने लिए क्रुद्ध नहीं थे, प्रत्युत इसलिए कि उस राक्षसी ने व्रज भूमि में अनेक छोटे बालकों को मार डाला था। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उनके प्राण लेकर उसे दंड दिया जाए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। खूब धन्यवाद सभी भक्तों को। तो श्री सुखदेव जी ने नवम स्कंद के अंत में मात्र दो श्लोक में संपूर्ण कृष्ण लीला परीक्षित जी को श्रवण कराई। जन्म से लेकर स्वधाम गमन तक की संपूर्ण लीला मात्र दो श्लोक में, और उसमें भी दो श्लोक में भी सुखदेव जी ने किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं। एक श्लोक में कहते हैं कि जातो गतः पितृगेहात् व्रजमे जितार्थो हत्वा रिपुंसुत सतानि कृतो रुदारा उत्पाद्यते शुपुरुष क्रतुभि समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। जातो गतः मथुरा में कंस की जेल में जन्म लेकर वहां से व्रज में वृंदावन में गए, गोकुल में गए और वहाँ पे अपने ज्ञातिजनों को अनेक प्रकार से सुख प्रदान किया और फिर वहाँ से मथुरा आए, मथुरा में कंस इत्यादि अनेक राक्षसों का संहार किया और वहाँ से द्वारिका गए और द्वारिका में 16,108 विवाह किए और प्रत्येक के गर्भ से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री उत्पन्न किए और गृहस्थी में रहते हुए अपने ही बनाए हुए वैदिक मार्ग का आचरण करके लोग को उपदेश देने के लिए सभी कर्म किए। आत्मनिगमम प्रथयन जनेषु, अपने ही वैदिक मार्ग का आचरण करके लोगों को दिखाया और पृथिव्या सवे गुरु भरम क्षपयन करुणा अंत समुत्कलिना युधि भूपचम वह दृष्ट्या विधूय विजय जयमुद्विघोष्य प्रोच्योदवाय च परम स समगात स्वधाम। कहते कि करुणा के वश में होकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार, कौरव और पांडवों के बीच में कलह प्रकट करके उसको निमित्त बनाकर पृथ्विया श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौर निताय की, उस कलह को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार भगवान ने नष्ट कर दिया। और कैसे? तो कि दृष्टिया विधुय विजय जयम उद्विघोष्य। हकीकत में विजय, अर्जुन की जो जय हो रही थी उस युद्ध को जीतने के कारण, लेकिन वह जय अर्जुन के बल से नहीं थी, दृष्टिया विधुय, कृष्ण ने अपनी दृष्टि से ही उन सब को मार दिया था। अर्जुन को तो मात्र, पांडवों को मात्र निमित्त बनाकर उसको यश प्रदान किया था, अन्यथा युद्ध तो भगवान ने अपनी शक्ति से, अपनी दृष्टि से ही समाप्त कर दिया था। महाभारत में प्रसंग आता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो लोगों में परस्पर चर्चा होने लगी। कोई कोई लोग कहते कि अर्जुन की भुजाओं के कारण, अर्जुन के बल से इस युद्ध को जीता गया, और कोई कोई कहता था कि भीम ने इतना पराक्रम दिखाया, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार दिया, तो भीम के कारण युद्ध को जीता गया है। लोगों की बातों को सुनकर अर्जुन और भीम के अंदर भी थोड़ा थोड़ा यह भाव आने लगा था कि हमारी वजह से। तो भगवान ने सोचा कि इन लोगों के हृदय में भी अहंकार का बीज अंकुरित हो गया है, और यह बीज बड़ा हो इससे पहले इसको काट देना चाहिए। तब भगवान सब पांडवों को साथ में लेकर एक जगह पर गए जहाँ पे वृक्ष के ऊपर एक बर्बरिक नाम का राक्षस था, उसका सिर लटकाया था। युद्ध के प्रारंभ में ही भगवान ने उसके सिर को काट दिया था, और जब उसने प्रार्थना की कि प्रभु मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो उसको देखने की कामना है, तो भगवान ने उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के पास में एक बहुत बड़ा पेड़ था उसके ऊपर उस मस्तक को लटका दिया, और वो भीम का पुत्र या तो भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। तो भगवान पांडवों को लेकर आज उसके पास गए और उस सिर को नीचे उतारा और कहा कि हे बर्बरिक, तुम इस युद्ध के निष्पक्ष दृष्टा हो, इसलिए तुम बताओ, तुमने संपूर्ण युद्ध अपनी आँख से देखा है कि इन युद्ध में सबसे ज्यादा पराक्रम किसका था। तब वह बर्बरिक कहता है कि प्रभु यह सब तो बहाने हैं, हकीकत तो यह है कि आप पांडवों के संबंध से अंतिम समय में मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, अन्यथा यह युद्ध तो आपने ही जीता है। मैं यहाँ से देख रहा था कि आपका सुदर्शन चक्र युद्ध भूमि के ऊपर इतनी तेजी से घूम रहा था, और घूमते घूमते सुदर्शन चक्र जिसके प्राणों को खींच लेता था वही योद्धा शत्रुओं के बाण से या तो शत्रुओं के प्रहार से मरता था। हकीकत में तो युद्ध आपने ही जीता है, इसलिए कहते कि दृष्टिया विधुय, अपनी दृष्टि मात्र से उस महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा पृथ्वी का भार जिसने हरण कर लिया, और प्रोच्य उद्धवाय, अंत में उद्धव जी को श्रीमद् भागवत का सुंदर ज्ञान दिया, और समगात स्वधाम, भगवान अपने धाम में चले गए। दो ही श्लोक में संपूर्ण कृष्ण लीला कह दी, यद्यपि कहना तो था ही उसको, क्योंकि कृष्ण लीला ही सुखदेव जी के लिए प्राण है,
और भागवत के प्राण भी कृष्ण लीला है, लेकिन फिर भी कहा नहीं। क्यों? क्योंकि श्रोताओं के अंदर, विशेष करके परीक्षित महाराज के अंदर, कृष्ण कथा के प्रति लालसा प्रकट करने के लिए, जैसे कोई भी मीठी चीज हो तो वह थोड़ी सी दी जाए तो उसको और प्राप्त करने के लिए मन में लालसा प्रकट होती है। गरुदत्त प्रभु खीर बनाते हैं तो थोड़ी सी मिलती है तो फिर आप दाढ़े चौंते। तो अच्छी चीज कम मिलने पर उसको और प्राप्त हूं। किसी के पास धन नहीं है तो उतना दुखी नहीं होगा, लेकिन एक बार धन आ गया, प्राप्त कर लिया और फिर चला गया तो उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात दौड़ेगा। तो ऐसे ही यहां पर कृष्ण कथा थोड़ी सी कहकर परीक्षित जी के अंदर लालसा प्रकट करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वक्ताओं को, प्रचारकों को कथा इस प्रकार कहनी चाहिए जिससे श्रोताओं के अंदर सुनने की लालसा और कथा सुनने की कामना प्रकट हो जाए। इस तरह कथा को प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये प्रचारकों के लिए कहा है, लेकिन इस बात को ग्रहण किसने कर लिया जानते हैं? सीरियल वालों ने आजकल के एपिसोड को पूर्ण उस जगह पर करते हैं कि दूसरे दिन देखना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही यहां पर परीक्षित जी और अन्य श्रोताओं के अंदर सुनने की कामना प्रकट करने के लिए दो ही श्लोकों में कृष्ण कथा सुखदेव जी ने सुना दी, और परीक्षित जी भी कृष्ण कथा के पिपासु थे तो तुरंत ही प्रश्न किया, तस्माद मुकुंदो भगवान पितृगेहात व्रजम गतः क्व वासः ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पति। भगवान क्यों गए और कहां पर वास किया? तब सुखदेव जी ने जन्म का प्रसंग सुनाया, और जन्म प्रकरण सुनाने के बाद पहली ही लीला भगवान की पूतना उद्धार, जिसके अंदर भगवान की अपार करुणा प्रकट हो रही है। कहते कि पूतना ने अपनी दुष्टता की सीमा बता दी और कृष्ण ने अपनी करुणा की सीमा बता दी। तो ऐसे पहली लीला सुखदेव जी श्रवण करा रहे बाल कृष्ण की, और उसमें आज के श्लोक में विशेष प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि उस राक्षसी ने व्रज भूमि के अनेक छोटे बालकों को मार डाला। हम लोग प्रायः सुनते हैं कि पूतना ने किसी भी बालक को देखा नहीं, सीधे ही नंदालय में गई थी कृष्ण के पास, और यहाँ पे लिखते हैं कि व्रज भूमि के अनेक बालकों को पूतना ने मार दिया। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और दूसरे दिन ही कंस ने सभा बुलाई, उसमें बड़े बड़े असुर, बकासुर, अधासुर, त्रिनावर्त इत्यादि सब असुर, और उस सभा में ऐसा निर्णय हुआ कि व्रज मंडल में 10 दिन के अंदर जितने भी बालक का जन्म हुआ है उस सबको मार दिया जाए। अब यह कार्य किसको सौंपा जाए? तब कहते कि पूतना को बुलाओ। पूतना अर्थात यह किसी का नाम नहीं है, यह पूतना एक जातिवाचक शब्द है। इसी प्रसंग में आगे जाकर जब गोपियां कृष्ण की रक्षा के लिए मंत्र उच्चारण करेगी तो उसमें कहती है कि कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय सर्वे नश्यंतु ते विष्णु नाम ग्रहण रव भी। यह सब राक्षसिया कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना भगवान के नाम ग्रहण से सब नष्ट हो जाए। तो ये जितनी राक्षसिया है वह सब बालकों का अनिष्ट करने वाली है। तो पूतना जाति की जो राक्षसिया है उसमें विशेष वह बालकों को मारती है, और उसका भोजन है उसका लोई खून पीना, बालकों का खून पीना। औरत की जाति के अनुसार उसके अंदर स्वाभाविक ऐसी ध्राण शक्ति है कि उसको सूंघने से मालूम हो जाता है कि कहाँ पर छोटा बच्चा है। स्वाभाविक है, उसका भोजन है। हम लोग कहीं से निकलते हैं तो महाप्रसाद की सुगंध से नहीं समझ जाते कि यहाँ कुछ अच्छा बन रहा है, तो उसका भोजन है तो सूंघ कर ही उसे मालूम हो जाता है कि यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है। तो उन पुतना राक्षसियों को आदेश दिया तो सब राक्षसियां व्रजमंडल में अलग अलग स्थानों पर जाकर जितने भी बालकों का जन्म हुआ था उसको मारने लगी। लेकिन भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से वह राक्षसियां उसी घर में गई जो कृष्ण के पक्षीय और असुर भाव संपन्न व्यक्ति थे, उसी घर में बालकों को देख सकी है पुतनाएं। और जो लोग धर्मात्मा थे, भक्त लोग थे, उसके घर में बालकों को नहीं देख पाए। सिर्फ असुर भाव वाले जो लोग थे, कंस के पक्षीय थे, ऐसे घरों में जा जाकर बालकों को मार दिया। और यह कार्य कृष्ण के जन्म से जन्म के दूसरे दिन से प्रारंभ हुआ था और छठे दिन एक पुतना नाम की राक्षसी जिसका नाम था बकी, अधासुर और बकासुर की बहन बकी नाम की पुतना आकाश मार्ग से उठते हुए गोकुल में गई और वहां पर जाकर सबसे पहले उसने अपना इतना सुंदर रूप बनाया। गोकुलवासी सब समझने लगे कि साक्षात लक्ष्मी जी लाला का दर्शन करने के लिए आई है। उतना सुंदर रूप बनाया और सीधी नंदालय में जाने लगी और अंदर गई तो माता यशोदा और रोहिणी जी उस समय बाल कृष्ण एक पर्यंक पर सोए हुए थे और दोनों माताएं पास में बैठकर अपने लाला के सौंदर्य का पान कर रही थी, देख रही थी अपने लाला को। और जैसी पुतना अंदर आई तो उसको देखकर, उसके तेज को देखकर दोनों मन में सोचने लगी कि अरे इतनी सुंदरी, लगता है कैलाश से साक्षात अंबिका देवी आई है अथवा इंद्राणी आई है या तो अनसुईया जी, कोई दिव्य देवी आई है हमारे लाला को देखने के लिए। तो दोनों माताएं वहां से उठकर खड़ी हो गई और थोड़े दूर जाकर खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि मन में सोचा कि हम यहाँ पर नजीक रहेंगी तो यह आशीर्वाद देने में संकोच करेगी, इसलिए थोड़ी दूर जाकर दोनों माताएं खड़ी रह गई। और पुतना सीधी आई भगवान कृष्ण के पास। हरिसूरी जी कहते हैं कि देखो प्रभु, आपने देख लिया, आपके स्वजनों में से किसी ने भी पुतना को नहीं रोका, सब आपके गोकुलवासी, आपके संबंधी, आपके हितेच्छु सब खड़े थे, आपकी माताएं भी थी, लेकिन पुतना को आने से किसी ने नहीं रोका। आपके स्वजनों ने ही आपको नहीं बचाया तो फिर मुझे क्यों आपने मेरे स्वजनों के भरोसे छोड़ दिया है? जब आपके स्वजन ही आपकी रक्षा नहीं कर पाए तो आपने मुझे क्यों मेरे स्वजनों के भरोसे छोड़ दिया है? हे कृष्ण, मुझे इस स्वजनों के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मुझे आपके भरोसे रहना है। यह बात तो आप भी जानते हैं कि ये कोई लोग रक्षा नहीं कर पाएंगे। महाभारत में वह हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी ने, उसके सभी स्वजन वहां पर उपस्थित थे और किसी को नहीं पुकारा था द्रौपदी ने। उसके ससुर जी थे, प्रपितामह भीष्म पिता थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुल गुरु कृपाचार्य थे और पांच पांच उसके पति बैठे थे, लेकिन किसने उसकी रक्षा की? कहते कि हे प्रभु, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, आपको ही उसकी रक्षा के लिए जाना पड़ा। वह गजराज जो ग्राह की चुंगल में फंसा था तो उसके सब स्वजन उसके साथ में थे, अनेक हथनियां, उसके बच्चे, बड़े बड़े गजराज, उसके संबंधी सब साथ में थे, लेकिन किसने उसको बचाया? कोई नहीं बचा पाया। और अंत में उस गज ने आपकी शरण ली, तो आपने ही उसको बचाया। ऐसे ही हे प्रभु, मुझे इन स्वजनों के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये कोई भी बचाने वाले नहीं है। इसलिए तो उत्तरा जी सीधी कृष्ण के पास, उसके सब ससुर वहाँ पर थे, और हाल ही में महाभारत का युद्ध जीतकर इतना बड़ा युद्ध जीता था, फिर भी किसी के पास उत्तरा जी नहीं गई, सीधे कृष्ण के पास। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। ये सब लोग जो खड़े, मार तो सकते हजारों हजारों लोगों को, लेकिन बचाने का कार्य एकमात्र आपका है, आपके सिवा कोई बचा नहीं पाता है। तो बहुत सुंदर हरीश्वरी जी कहते हैं कि प्रभु आपने देख लिया, यह स्वजन ही आपकी रक्षा नहीं कर पाए, तो हमारे स्वजन कैसे हमारी रक्षा करें। तब वह पूतना एकदम नजदीक आई, और उसको देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस प्रसंग का सबसे सुंदर श्लोक, अनेक भक्तों ने अपने अपने भाव दिए कि क्यों इसने आंखें बंद कर ली, और सुखदेव जी ने भक्तों के लिए ही छोड़ दिया है, सिर्फ इतना कह करके आंखें बंद कर ली। अब क्यों कर ली आप लोग सोचिए। कल वनमाली प्रभु जी ने भी बहुत सुंदर अलग अलग भाव बताए थे, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी इसमें 5 भाव बहुत सुंदर बताए हैं। एक तो कहते कि निजात्यंत बालत्व भीरु स्वज्ञापनाय, बालक स्वभाव के वश, बालकों का स्वभाव होता है कि अपनी माता के सामने तो बहुत खेलते हैं, हंसते हैं, लेकिन कोई अपरिचित व्यक्ति को देखकर भयभीत हो जाते हैं और भय के कारण आंखें बंद कर लेते हैं। तो बाल स्वभाव के अनुसार कृष्ण ने भी उस पूतना को, अपरिचित को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर कहते कि तादृशा मंगल दर्शना भावाय, ऐसी अमंगल पूतना को क्यों देखे। पूत का अर्थ है पवित्र, और ना अर्थात नहीं है। जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, उसको क्यों देखे। ऐसी अपवित्र वस्तु को देखने से दृष्टि भी अपवित्र होती है, और बुद्धि भी, मन भी अपवित्र होता है, तो इसको क्यों देखें, ऐसा सोचकर अपनी आंखें बंद कर ली। और तादृश अमंगल, ऐसी अमंगल स्वरूपा दुष्टा, जो यहाँ पे गोकुल में व्रज में जन्मे हुए बालक, अर्थात मेरे भक्तों को मारने के लिए आई है, तो जो मेरे भक्तों का अनिष्ट करना चाहते हैं, ऐसे दुष्टों का तो मैं कभी मुख भी नहीं देखता हूँ, ऐसा सोचकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कहते हैं कि स्वदृष्टि स्वभाविक तद विद्य दर्शना भावाय, तीसरा भाव देते हैं कि स्वदृष्टि स्वभाविक, भगवान ने सोचा कि मेरी दृष्टि का स्वभाव है, अर्थात मेरी आंख पड़ते ही माया नष्ट हो जाती है। यह पूतना का मूल स्वरूप तो घोर राक्षसी का और अत्यंत उग्र स्वरूप है, लेकिन माया से सुंदरी का रूप धारण करके आई है, और मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी माया नष्ट हो जाएगी और मूल रूप में प्रकट हो जाएगी। तो इसको, इसके ऐसे भयंकर रूप को देखकर माता भयभीत हो जाएगी, इसलिए भगवान ने उसको नहीं देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर कहते कि मातृभाव दर्शिकाय तस्य स्वकर्तुक वधे लज्जानुत्पत्येव, कहते कि यह हमको दूध पिलाने आई है, भले ही विष मिलाकर, लेकिन आई है मातृभाव लेकर। और एक तो यह स्त्री है और उस पर से माता का भाव लेकर आई है, तो इसको मारना उचित नहीं है, लेकिन मारूंगा नहीं तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसलिए मारना भी जरूरी है। तो भगवान को इस बात को सोच करके, यह स्त्री है और माता का भाव लेकर आई है, और इसको मारना भी है तो लज्जा आ रही है, तो लज्जा के कारण लज्जा उत्पत्ति हो, लज्जा के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। और तन मरण वैकल्य दर्शना भावाय, कहते कि यह पूतना जब मरेगी तो उसको बहुत कष्ट होगा, अगले श्लोक में इसका वर्णन आएगा। तो भगवान कहते कि उसका तो स्वभाव है, भले ही असुरों को मारते हैं लेकिन क्रोध में आकर या दोष से नहीं, उसके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान असुरों को मारते, अन्यथा उसके प्रति भी उसके हृदय में करुणा है, यह तो सिर्फ उसका उद्धार करने के लिए मारते हैं। तो कहते कि जब इसको मारूंगा तो यह चटपट आएगी और मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। तो हरिशूरी ने भी बहुत सुंदर इस पर भाव दिए हैं, कहते हैं कि यह कितनी दुष्टा है, जो कार्य तो माता का करने आई है लेकिन वेश पत्नी का धारण करके आई है। कार्य करने आई है हमें दूध पिलाने का, लेकिन स्वरूप कैसा बना के आई है, हमारी पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप बना के आई है। तो जिसका स्तनपान करना है उसको पत्नी के रूप में देखना उचित नहीं है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर कहते हैं कि कृष्ण के नेत्रों को सभी जगह पर राजहंस कहा है, भगवान के नेत्र कैसे राजहंस के समान है, और पुतना कौन है, बकी बगुले जैसी है। तो भला हंस होकर बगुली का दर्शन क्यों करे, बगुली को क्यों देखना, यह सोचकर नेत्र बंद हो गए। और एक भाव देते हैं कि कृष्ण ने सोचा कि यह विष पीना ये कौन सी बड़ी बात है, ये कार्य तो मैं बंद आंख से भी कर सकता हूं। हम कई बार देखते हैं कि कई लोग बहुत आसान कार्य हो तो क्या कहते हैं, ये कार्य तो मेरे बाएं हाथ का है, खेल खेल में कर, सोए सोए भी ये कार्य कर सकता हूं बंद आंख से। ऐसे ही कृष्ण कह रहे कि ये कार्य करना कौन सी बड़ी बात है, बंद आंख से कर सकता हूं। अरे गरुड़ बड़े बड़े विषधारी सर्पों को खा जाता है, वह गरुड़ मेरा सेवक है। संसार में जितने भी विषधारी सर्प है उन सभी सर्पों का राजा अनंत शेष मेरा सेवक है। और शंकर जिसने समुद्र मंथन से प्रकट हुआ हलाहल विष पान कर लिया, वह शंकर भी मेरे सेवक है। तो गरुड़ अनंत शेष और शंकर जैसे मेरे सेवक है तो मैं तो उसका स्वामी हूं, मेरे लिए यह कार्य कौन सा बड़ा है, बंद आंख से पी जाऊंगा, तो इसलिए आंखें बंद कर दी। और अंत में कहते हरिश्वरी जी के भगवान के जो नेत्र है उसको भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन है, उसमें सूर्य और चंद्रमा को ही भगवान के नेत्र बताए हैं। तो सूर्यदेव और चंद्रदेव सोच रहे हैं कि कृष्ण तो परम करुणामय है, वह इस दुष्टा को चाहे जो भी सदगति देना है दे, लेकिन हम कम से कम ऐसी दुष्टा को अपने मार्ग से तो नहीं जाने देंगे, सूर्य मार्ग या चंद्र मार्ग से इसको सदगति पर उच्च लोक पर नहीं जाने देंगे, और जिस मार्ग से भेजना है भले ही कृष्ण भेज दे। तो ऐसे अनेक श्री वल्लभाचार्य जी ने भी एक भाव दिया है कि पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों कर ली। तो कहते कि पूतना मूर्तिमंत अविद्या है। अविद्या क्यों कहा, क्योंकि पूतना पवित्र नहीं है, अपवित्र है, इसलिए अविद्या है। स्वाभाविक है विद्या को पवित्र कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में कोई कुछ पवित्र नहीं है। तो ज्ञान अर्थात विद्या, विद्या के समान कुछ पवित्र नहीं है, तो उसका उल्टा करेंगे अविद्या के समान कुछ अपवित्र नहीं है, तो यह पूतना मूर्तिमंत अविद्या है, इसलिए मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिकेगी नहीं, मैं अगर इसके सामने देख लूंगा तो ये यहीं पर मर जाएगी। इसको मारना तो है लेकिन यहां पर नहीं मारना है, यहां से बाहर ले जाकर कंस के बगीचे के ऊपर ले जाकर मारना है, इसलिए यहां पर नहीं मारना है, तो अभी आंख बंद कर लेते हैं। यह सोच के भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो इस तरह अनेक प्रकार के संतों ने भाव अलग अलग दिए हैं कि ऐसा सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूतना ने तब सोचा कि अरे मैंने आज तक कितने बालकों को मार दिया लेकिन ऐसा सुंदर बालक मैंने कभी नहीं देखा है। तो वह भी उसका सौंदर्य देखकर थोड़ी सी मोहित हो गई लेकिन सोचा कि जो भी हो आज रात्रि में ही गोकुल के सारे बालकों को मारना है। तो ऐसा सोचकर उसने वहीं पर तस्मिन एव उसी स्थान पर उस बाल कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, क्यों मारने के लिए। और स्तनम दुर्जर वीर्यम उल्बणम शिशोर ददावत, और उस बाल कृष्ण को अंकम आदाय गोद में लेकर अपने स्तन जिसके ऊपर उसने भयंकर दुर्जर वीर्यम उल्बणम अर्थात ऐसा भयंकर विष लगाया था कि खाने की बात दूर रही जिसकी गंध मात्र से व्यक्ति मर जाए, ऐसा उल्बण विष लगाया था। और वह विषयुक्त स्तन शिशु ददाव अथ उस शिशु कृष्ण के मुख में दे दिया और कहते कैसी है पूतना, तो के घोरम घोरा। घोर क्यों कहा, तो स्वाभाविक है कि उसकी दुष्टता देखो कि तस्मिन एव स्थाने उसी स्थान पर उसकी उस बालक की माता सामने खड़ी है, माता के सामने ही उस बालक को मार डालना चाहती है। अन्यथा मारना ही है तो कुछ माता से दूर ले जाकर भी मार सकती है, लेकिन इतनी घोर प्रकृति की थी कि यशोदा जी के सामने ही उसके बालक को मारना चाहती थी। और दूसरा घोर कहने का भाव कि भगवान का सौंदर्य देखकर बड़े से बड़ा क्रूर प्रकृति का या तो दुष्ट स्वभाव वाला कोई भी राक्षस हो या पशु पक्षियों का भी स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। जैसे कृष्ण की सौंदर्य के बारे में इसी प्रसंग में आगे, इसी प्रसंग में नहीं मथुरा लीला में सुखदेव जी कहते हैं कि मथुरा की गलियों में से जब कृष्ण निकले तो उसका दर्शन करके वहां पे जितने भी वृद्ध व्यक्ति थे वह सब युवान हो गए। तत्र प्रवयसो अपि युवानो अति बल ओजसो, जो प्रवयस जो वृद्ध थे वह सब भी युवान हो गए और अति बल ओजस उसकी इंद्रियों में बल आ गया और शरीर में तेज आ गया। क्यों, पिबंतम अक्षेह मुहु मुकुंद मुखाम भुज सुधाम। मुकुंद कृष्ण की मुख रूपी सुधा उसके सौंदर्य माधुर्य का पान करते हुए वह सब वृद्ध थे वह भी युवान हो गए। कितनी सुंदरता होगी अब सोचने का भी। और एक रामायण में भी प्रसंग आता है कि जब लक्ष्मण जी ने सुरपंखा के नाक कान काट दिए तो सुरपंखा गई सीधी खरदूषण के पास और खरदूषण 14,000 का सैन्य लेकर वहां पर आए। और इधर भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा में रखकर अकेली युद्ध में आए और खरदूषण जैसे ही सामने आए और सामने देखा कि भगवान एक सुंदर किशोर बालक खड़ा है कुमार, तो दोनों आपस में बात करते हैं कि अरे भाई हम लोगों ने आज तक हम भरी जन्म देखी नहीं अस सुंदरता है, जन्म पूरा बीत गया हमने कितने देवताओं गंधर्व यक्षों को बंदी बना लिया और कितने मनुष्यों को तो हम खा गए लेकिन आज तक ऐसी सुंदरता हमने देखी नहीं है। भले ही इसने हमारी बहन को कुरूप कर दिया लेकिन यह सुंदर बालक वध के योग्य नहीं है, इसको मारना उचित नहीं है, मारने के लिए ही आए हैं और उस पर भी असुर है फिर भी क्या सोच रहे इस सुंदर बालक मारने योग्य नहीं है। तब मंत्री को भेजा एक मंत्री को कि जाओ उसको जाकर समझाओ, उसको कहो कि वह अपनी पत्नी हमारे हवाले कर दे और दोनों आशा जाए यहां से। तो खरदूषण जैसे उग्र प्रकृति के राक्षस का भी भगवान का सौंदर्य देखकर मन में सोचा कि नहीं नहीं ऐसे सुंदर बालक मारने योग्य नहीं है। महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से निकले हूँ तब तक कांचन देह उस सुंदर विग्रह को देखकर वहां पर झारखंड के जंगल में रहने वाले हिंसक व्याघ्र सिंह इत्यादि पशुओं ने भी अपना हिंसक स्वभाव छोड़ दिया और महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा तो बड़े से बड़ा कठोर और हिंसक प्रकृति का जीव भी कृष्ण को देखकर उसके सौंदर्य को देखकर उसका भी हृदय परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण सौंदर्य की मूर्ति साक्षात बाल कृष्ण कहते कि कृष्ण सुंदर नहीं है, तो कृष्ण सुंदर नहीं है, कृष्ण सौंदर्य है। सौंदर्य अर्थात जिसके अंदर से संसार की समस्त सुंदरता प्रकट होती है, उस सौंदर्य सुंदरता के मूल स्थान जिसके अंदर से सुंदरता प्रकट होती है ऐसे सौंदर्य है। और उसको देखकर भी इस पुतना के हृदय में थोड़ा सा भी सद्भाव जागृत नहीं हुआ, इसलिए कहते घोरा, कितनी घोर स्वभाव वाली थी। और जब उसने अपना स्तन कृष्ण के मुख में दे दिया तब भगवान ने क्या किया, गाढ़म कराभ्याम, गाढ़ अर्थात मजबूती से, कराभ्याम बहुवचन में, दोनों हाथों से मजबूती से उसके स्तन को पकड़ लिया। क्यों? कारण भगवान सोच रहे कि यह स्तन का कार्य है दूध देना, माता के स्तन से ही बालक का जीवन चलता है, उस दूध से ही बालक जीवित रहता है, लेकिन यह स्तन बालक को मारने वाला हो गया, दूध की जगह पर विष देने वाला हो गया। क्यों? कुसंग के कारण, क्योंकि इस स्तन ने पूतना जैसी घोर राक्षसी का कुसंग किया और उसके फल स्वरूप यह दूध देने वाला, जीवन देने वाला स्तन भी आज मृत्यु और विष देने वाला हो गया। तो इसने कुसंग किया है तो उसकी सजा इसको मिलनी चाहिए, ऐसा सोचकर भगवान ने उसको मजबूती से गाढ़म कराभ्याम पकड़ लिया, छोड़ना नहीं है इसको। और भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वित पिबत, और उस तन के अंदर दूध के साथ विष और पुतना के प्राण को भी पीने लगे, रोष समन्वित, रोष से युक्त होकर। उस पर भी लिखा है कि रोष अर्थात क्रोध, और क्रोध के अधिष्ठात्र देवता है शिव जी। तो मानो कहते हैं कि रोष समन्वित अर्थात शिव जी से युक्त होकर कृष्ण ने शिव जी को बुलाया और कहा कि महाराज हम तो यहाँ पर गोकुल में आए थे, सोचा था कि दही दूध माखन मिश्री खाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही ये मौसी विष लेकर आ गई, दूध दही तो अभी मिला नहीं है और पहली बार में विष पीने का, विष खाने का समय आ गया। प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः, पहले ही ग्रास में मक्षिका आ गई, तो कहा कि आप आ जाइए और आप इसका विष और इसका प्राण पी लीजिए और हम दूध पिएंगे। क्योंकि भगवान सोच रहे कि यह पूतना भले जैसे ही आई लेकिन हमको दूध पिलाने आई है, तो इसका दूध हमको पीना है, और जिसका दूध पीते वह तो माता हो गए, और दूध पिएंगे और फिर इसको मारेंगे तब तो हम माता के हत्यारे हो जाएंगे, मातृहा हो जाएंगे, तो ये बात उचित नहीं है। इसलिए हे शिव जी आप आइए, आप इसके प्राण और विष को पी लीजिए और हम इसके दूध को पिएंगे। इसलिए कहते कि प्राणे है समम रोष समन्वितो पिबन, रोष के साथ पी लिया और पूतना चटपटाने लगी। अगले श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन आएगा, तो बहुत सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी ने, और प्रसंग ऐसा है कि इसका अंत करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि यह एतद् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भक चरितम श्रोणियात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रति। यह प्रसंग जो कोई सुनेगा उसको भगवान कृष्ण में रति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक जीव इस बात को नहीं जानेगा कि संसार में कृष्ण से बड़ा दयालु कोई है ही नहीं, तब तक उसके चरणों में प्रीति नहीं होगी। और इस प्रसंग को सुनकर सब जान जाएंगे कि कृष्ण से बड़ा कोई दयालु नहीं है। किम शरणम व्रजे, उद्धव जी कहते अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिगांस या प्यायदपि साध्वी लेभे गतिम धात्रयुचितम ततो अन्य कमवा दयालुम शरणम व्रजेत। हे विदुर जी बताइए, इससे बड़ा कौन दयालु है जिसकी शरण में हम जाए। और इसलिए सुखदेव जी कहते कि यह प्रसंग जो सुनेगा श्रद्धापूर्वक तो उसको भगवान के चरणों में गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाएगी। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों ने यहाँ पर कमलोचन प्रभु वनमाली प्रभु सब बैठे और मैं ऊपर चढ़ के बैठा हूँ, फिर भी जो गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम।